निवेदन प्रथम संस्करण से। विद्यापति रससिद्ध कवि थे, एक ऐसे कवि जो कभी भी देश काल के संकुचित सीमाओं में आबद्ध नहीं होते। एक जमाना था जब विद्यापति के आलोचक उन्हें इस या उस भाषा का कवि प्रमाणित करने के अनावश्यक प्रयत्न को ही समीक्षा की इयत्ता समझते थे। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि विद्यापति मैथिल के कवि हैं, हिंदी के हैं अथवा बंगला के। उन्हें अपना सिद्ध करने को सब तैयार थे। नाना प्रकार के समन्वय सूत्रों की घनी चादरें सभी बुनते जा रहे थे और किसी ने एक क्षण के लिए यह नहीं सोचा कि बाहरी संबंधों की इन परतों में कहीं वे गुण तो नहीं छिपते जा रहे हैं जिनकी वजह से कवि को सभी अपना कहने के लिए उत्कंठित होते थे। विद्यापति मैथिल के कवि सिद्ध हुए जैसा कि वे थे। तब प्रश्न आया कि वे शैव थे या वैष्णव। विद्यापति को उस रूप में ग्रहण करने को हम तैयार नहीं थे जैसा कि वे थे, क्योंकि किसी कवि की कविताओं को समझने के पहले हम अपने पूर्वग्रहों की तृप्ति अधिक आवश्यक समझते थे। हम मानते थे कि शैव कवि यदि प्रेम गीत लिखता है तो वह अवश्य श्रृंगारिक होगा, क्योंकि भक्तिपरक प्रेम गीत तो केवल वैष्णव कवि ही लिखता है। इसलिए समालोचना के तीसरे दौर में विद्यापति के आलोचकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि विद्यापति भक्त थे या श्रृंगारी। समालोचना के चौथे दौर में कौन से ऐसे प्रश्न उपस्थित हो गए हैं जिनके लिए यह पुस्तक लिखनी पड़ी, ऐसा प्रश्न सहज स्वाभाविक है। उत्तर में निवेदन है कि तीन दौर की भयंकर समीक्षाओं के बाद विद्यापति सामान्य विद्यार्थी के लिए वर्ज्य हो चुके हैं और साहित्य की उच्चतम कक्षाओं में भी उनके स्तुति पद और प्रकृति संबंधी गीत आदि ही पढ़ाए जाते हैं। इसलिए अब आलोचक के सामने उनके काव्य के विषय में लिखी हुई यह पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो विद्यापति के काव्य को किसी न किसी बिल्ले के आधार पर समझते हैं, जो उनके काव्य को उपर्युक्त ज्वलंत प्रश्नों को दृष्टि में रखकर ही पढ़ना चाहते हैं, या जो विद्यापति के काव्य को वर्ज्य और अवर्ज्य के खानों में बांट कर रखते हैं और उतना ही अंश पढ़ना चाहते हैं जितना कोर्स में निर्धारित है। यह पुस्तक विद्यापति के उन पाठकों के लिए है जो 14वीं शताब्दी के संघर्षपूर्ण वातावरण में उत्पन्न हुए एक महान कवि के गत्वर व्यक्ति को देखना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करके उन सांस्कृतिक मूल्यों का आकलन करना चाहते हैं जो ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। ऐसे प्रबुद्ध पाठकों के मन में भी श्रृंगार और भक्ति के बारे में किंचित द्विधा का भाव हो सकता है। इसे दृष्टि में रखकर भक्ति काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पुनः परीक्षा की गई है और परिपार्श्व में भक्ति और श्रृंगार के संबंधों का विश्लेषण किया गया है। विद्यापति सौंदर्य और प्रेम के कवि थे। सौंदर्य के बारे में उनकी क्या धारणा थी अथवा उनके सौंदर्य बोध का क्या स्तर था आदि प्रश्नों पर काफी विस्तार से विचार किया गया है। मानव और प्रकृति दोनों ही के सौंदर्य चित्रण में कवि की रुचि, शैली, मौलिकता और परंपराधर्मिता यानी पुरानी परिपाटी की स्वीकृति की व्यवस्था की गई। प्रेम के विषय में कवि के विश्वास और उसकी धारणाओं का स्पष्टीकरण करते हुए राधा और कृष्ण के प्रेम की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन विद्यापति की राधा शीर्षक निबंध में किया गया है। गीत काव्य के बारे में उसके रूप और आत्मा को दृष्टि में रखकर बिल्कुल नए ढंग से विचार किया गया है। छायावादी गीतियों के सिलसिले में लिरिक शब्द का प्रयोग तो बहुत बार किया जाता है, किंतु अभाग्यवश अभी तक इस काव्य रूप के विभिन्न पक्षों के सम्यक अध्ययन का अभाव दिखाई पड़ता है। मुझे विश्वास है कि गीत काव्य उदय और विकास शीर्षक निबंध कुछ अंशों में इस कमी को पूरा करेगा और विद्यापति की गीत रचना प्रक्रिया को समझने में तथा उनके गीतों की लय और आत्मा को पहचानने में थोड़ा बहुत सहायक होगा। अंत में विद्यापति के अवहट्ट काव्य का भी संक्षिप्त मूल्यांकन दे दिया गया है, क्योंकि यह उनके कृतित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसका अध्ययन अनिवार्यतः उनके साहित्य की कई प्रश्नों को समाहित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। विद्यापति के पदों के उद्धरण आदि मैंने श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पदावली से लिए। डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार द्वारा संपादित विद्यापति से भी कई पद दिए गए हैं। खासतौर से ऐसे पद जो पाठ और अर्थ की दृष्टि से पदावली के पदों से ज़्यादा प्रमाणिक मालूम हुए हैं। मैं इन विद्वान संपादकों का आभारी हूँ। इस कार्य में मुझे अन्य भी कई विद्वानों की रचनाओं से पर्याप्त सहायता मिली। ऐसे सभी सुधी कृतिकारों के प्रति मैं अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हिंदी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 11/11/1957। शिवप्रसाद सिंह।